लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हमने क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं युवाओं के संबंध में संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस द्वारा युवाओं और पूरी कलिसिया के नाम प्रेरितिक उद्बोधन पर एक चर्चा शुरू की है। हमने अपने पिछले प्रसारण में यीशु के युवा काल की चर्चा की थी, जिसकी चर्चा हम आज भी जारी रखेंगे। अपने किशोर अवस्था में यीशु का संबंध अपने पिता के साथ एक प्रिय पुत्र के समान रहा। अपने पिता की ओर अभिमुख वे उनके कार्यों को करने हेतु अपने को समर्पित करते हैं। क्या आपको यह पता नहीं था कि मैं अपने पिता के कार्यों को कर रहा हूँगा? अतः हम अपने में यह ना सोचें कि किशोरावस्था में यीशु ख्रिस्त का जीवन अपने में ही सीमित था या अपने युवा समय में वे अपने आप में खोए हुए थे। एक युवा के रूप में उनका जीवन अपने में उन युवाओं के समान था जो अपने को अपने परिवार और अपने लोगों के साथ संयुक्त करते हैं। उन्होंने अपने पिता के व्यावसायिक कार्य को सीखा और एक कुशल बढ़ई बने। सुसमाचार का एक संदर्भ हमें उन्हें प्रस्तुत करते हुए कहता है, वह बढ़ई का बेटा है। वहीं दूसरी जगह हम उसे एक बढ़ई के रूप में पाते हैं। ये सारे वर्णन हमें उनके बारे में यह बतलाते हैं कि वह शहर में एक नव युवक के समान है जो सामान्य रूप में दूसरों के संग अपने को संयुक्त करता है। कोई भी उसे एक खास या विशेष व्यक्ति के रूप में दूसरों से अलग नहीं करता है। यही कारण है कि जब यीशु अपने पिता के कार्यों की शुरुआत करते और लोगों को उपदेश और शिक्षा देते तो लोग इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कहां से उन्हें ये सारे ज्ञान प्राप्त हुए। क्या यह योसेफ का पुत्र नहीं है? वास्तव में यीशु मरियम और योसेफ के साथ अपने संबंध में संकुचित और तनाव भरी स्थिति में नहीं बढ़े, लेकिन वे बृहद परिवार, अपने माता पिता के सगे संबंधियों, मित्रों और अपने इष्ट कुटुंबों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। इस भांति हम समझ सकते हैं, जब वे यरूशलेम की यात्रा कर वापस लौटते तो उन्हें एक दिन नहीं देखने पर उनके माता पिता ने यही सोचा, 12 बरस के बालक स्वरूप वह अपने सगे संबंधियों के साथ भीड़ में घूम रहा होगा। भीड़ में नहीं देखकर उन्होंने यही सोचा कि वह यात्रियों के दल में होगा और वे एक दिन की यात्रा पूरी कर लेते हैं। निश्चय ही वे अपने में यही सोचते हैं कि यीशु वहाँ दूसरे युवाओं के साथ मिलजुल कर हंसी मजाक कर रहे होंगे। वे अन्य वयस्कों के द्वारा बतलाई जा रही कहानियों बातों को सुन रहे होंगे और दल के लोगों की हंसी खुशी और दुखों के अंग बन रहे होंगे। संत लूकस समुदाय की चर्चा करते हुए ग्रीक शब्द सिनोदिया का जिक्र करते हैं, जो समुदाय का एक साथ चलने की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराता है और हम पवित्र परिवार को इसका अंग बनता हुआ पाते हैं। हम यीशु के माता पिता के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जिन्होंने यीशु को खुले रूप में दूसरों के साथ सीखने की स्वतंत्रता दी। यीशु ख्रिस्त के जीवन की ये सारी बातें उन युवाओं को प्रभावित और प्रेरित करती हैं, जो अपने जीवन को तैयार करते हुए प्रेरिताई कार्य में अपने को संलग्न करने की बात सोचते हैं। यह हमसे इस बात की मांग करती है कि हम अपने में इस बात के प्रति सचेत रहते हुए कि हम एक परिवार और लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। अतः हमें अपने को पवित्र आत्मा हेतु खुला रखने, जिससे वे हमें ईश्वर के कार्यों को करने हेतु आगे ले चलें, जो हमारी व्यक्तिगत बुलाहट बनती है। हम ईश्वर पिता के संग एक अच्छे संबंध का विकास करें। युवाओं के संबंध में अपने प्रेरिताई को लेकर हम इन बातों को नजरअंदाज ना करें, जिससे हम एक परियोजना मात्र का संचालन ना करें, जो युवाओं को अपने परिवारों और बृहद समुदाय से पृथक करता हो या कुछ एक का चुनाव करता और उन्हें दूषित होने से बचाता हो, बल्कि हमें ऐसे कार्यों को संचालित करने की जरूरत है जो उन्हें संगठित करता हो, आगे ले चलता हो और उन्हें दूसरों से मिलने हेतु प्रेरित करता हो और वे प्रेरिताई कार्य हेतु अपने को उदारता में देते हों।
मेरे संचल मसीहा, मेरे संचल मसीहा, मेरे संचल मसीहा, मेरे संचल मसीहा।
यीशु ख्रिस्त युवाओं को दूर से खड़े होकर शिक्षा नहीं देते, वरन वे युवाओं के जीवन के अंग बनते हैं। युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सुसमाचार में वर्णित यीशु ख्रिस्त के बारे में चिंतन करें, क्योंकि वे अपने हृदय में युवाओं के मनोभाव को धारण करते हैं। हम इसे इन उदाहरणों में पाते हैं। यीशु ने अपने पिता में पूर्ण विश्वास किया, उन्होंने अपने शिष्यों से मित्रता के भाव कायम रखे और उन्होंने अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों में भी पिता के प्रति विश्वस्त सेवक बने रहे। उन्होंने अपने जीवन में कमजोर, विशेषकर गरीबों, बीमारों, पापियों और समाज में बहिष्कृत लोगों के प्रति अति संवेदना दिखलाई। उन्होंने अपने समय के धार्मिक और राजनैतिक नेताओं को चुनौती प्रदान की। वे इस बात से वाकिफ हैं कि गलत समझा जाना और ठुकराया जाना हृदय में कैसे अनुभूति लाती है। उन्होंने अपने निगाहों को पिता की ओर उठाते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने को पिता के सुरक्षित हाथों में सौंप दिया। अतः यीशु ख्रिस्त में सभी युवा अपने को देख सकते हैं। दूसरी ओर हम यीशु को पुनर्जीवित पाते हैं, जो चाहते हैं कि हम उनके पुनरुत्थान द्वारा मिलने वाले नए जीवन के सहभागी हों। दुनिया के बुढ़ापे की स्थिति में वे सही अर्थ में युवा हैं। दुनिया अपने को उनके युवापन की चादर से ढकने और उनकी ज्योति से प्रज्वलित होने को आतुर है। उनका हमारे निकट रहना हमें जीवन की सच्ची खुशी से साराबोर करता और हमारे सपनों, कार्यों, आदर्शों को सजीव बनाता है। हम अपने में यह घोषित करते हैं कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है। संत मार्कुस हमें पुनर्जीवित यीशु के सच्चे युवा होने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यीशु के दुखभोग के समय एक युवक जो यीशु का अनुसरण करना चाहता था, भय के कारण अपने वस्त्रों को छोड़कर भाग गया। उसमें साहस की कमी थी, जिसके कारण वह जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। वहीं यीशु के पुनरुत्थान में हम एक दूसरे युवक को देखते हैं, जो सफेद वस्त्र पहने नारियों से कहता है कि वे भयभीत ना हों, बल्कि पुनरुत्थान की खुशी को घोषित करें। यीशु हमें बुलाते हैं, जिससे हम रात के अंधेरे में दूसरे युवाओं के लिए चमकते सितारे बन सकें। वे हमें असल तारे की ओर देखने को कहते हैं। वे हमें विभिन्न प्रकार के निशानियों को प्रदान करते और उस किसान का अनुसरण करने का आह्वान करते हैं, जो अपने खेतों में हल चलाने के पूर्व तारों की ओर निगाहें फेरता है। ईश्वर हमारे जीवन में तारों को जगमगाते हैं, जिससे हम चलना जारी रखें। यीशु ख्रिस्त स्वयं हमारे लिए आशा की ज्योति हैं, जो हमारे जीवन के अंधकार में हमारे लिए चमकता हुआ सितारा बनते हैं।
मेरे संग चल। जान है, राहें मेरी अनजान है, राहें मेरी
डर है लगता साथ तो चलना, चलती रहूं मैं राहों में तेरी,
डर है लगता साथ तो चलना, चलता रहूं मैं राहों में तेरी, मेरे संग चल मसीहा।
तूने चला था झीलों के संग इमाउस की राह पर।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 11 फरवरी को लूर्द की माता मरियम के पर्व एवं विश्व रोगी दिवस के अवसर पर दो ट्वीट संदेश प्रकाशित किए। उन्होंने पहले ट्वीट संदेश में लूर्द की माता मरियम से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, मैं रोगियों के स्वास्थ्य की कुंवारी मरियम को उन सभी लोगों, उनके परिवारों और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाले सभी लोगों को सौंप देता हूँ जो बीमारियों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। मैं सभी को अपनी हार्दिक प्रार्थना में सामीप्य का आश्वासन देता हूँ। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा ने पीड़ा के समय यीशु ख्रिस्त की करुणा पर भरोसा रखने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने लिखा, यीशु ख्रिस्त उन लोगों को करुणा प्रदान करते हैं जो निर्बलता, पीड़ा एवं कमजोरी की स्थिति के कारण विपत्ति का सामना करते हैं। वे सभी को अपने जीवन में सहभागी होने के लिए बुलाते हैं ताकि हम उनके कोमल स्नेह को महसूस कर सकें। कोलंबिया के कार्तिक धर्मदर्शों ने बोगोटा में अपनी आम सभा संपन्न की। सभा में उन्होंने इस आशा पर जोर दिया कि वे देश में मौजूद कठिनाइयों का हल करने में मदद कर सकेंगे। कोलंबिया के धर्मदर्शों ने अपनी 109वीं आम सभा के अंत में एक प्रेस सम्मेलन में जारी संदेश में 7 मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत किया। वे बिंदु इस प्रकार हैं, जीवन की रक्षा एवं सम्मान, सामाजिक संवाद की आवश्यकता, देश की आम योजना की प्राप्ति, शांति प्रक्रिया को ठोस समर्थन, मानव तस्करी एवं नशीली पदार्थों की तस्करी की गंभीर बुराई एवं इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणामों को पहचानना, अप्रवासी हमारे भाई बहनों का स्वागत और समग्र परिस्थितिकी को प्रोत्साहन। संदेश में कहा गया है कि निर्णायक, जटिल और चिंताजनक ऐतिहासिक क्षण का सामना करते हुए देश में यह आवश्यक है कि सुनने, चिंतन करने, वार्ता, एकता एवं समर्पण के मनोभाव को अपनाया जाए ताकि हर कठिनाई को अवसर में बदला जा सके। कोलंबिया में इस समय वेनेजुएला से अप्रवासी बड़ी संख्या में प्रवेश कर रहे हैं। हाल के महीनों में राष्ट्रपति इवान दुक्वे के प्रशासन के लिए लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन भी किया था। सरकार के अलोकप्रिय आर्थिक योजनाओं और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं तथा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वालों की हत्या में सरकार की कार्रवाई की कमी के कारण भी लोग परेशान हैं। जारी दस्तावेज में कहा गया है कि कोलंबिया की कलीसिया जीवन की रक्षा एवं सम्मान पर जोर देती है। धर्मदर्शों ने हिंसा को समाप्त किए जाने की अपील की है क्योंकि न ही हथियार से और न ही विचारों को थोपने से कुछ हासिल किया जा सकता है। धर्मदक्षों का मानना है कि वार्ता के द्वारा कलीसिया लोगों की आवश्यकताओं को पहचान सकती है तथा राष्ट्र एवं नागरिक समाज के बीच संबंध को मजबूत कर सकती है। उन्होंने शांति प्रक्रिया के महत्व पर बल दिया है, खासकर पीड़ितों और हथियार छोड़कर समाज में पुनः एकीकरण का प्रयास कर रहे लोगों पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि वार्ता के द्वार को खुला रखना एवं मेल मिलाप हेतु अथक संघर्ष करना आवश्यक है। धर्मदक्षों ने गौर किया कि इन प्रयासों के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी एवं इससे जुड़ी गतिविधियों एवं अमानवीय और अन्याय के कार्यों से हो रहे अप्रवासियों के शोषण को रोकना है। अंततः समग्र पारिस्थितिकी के संबंध में धर्मदक्षों ने कहा कि ईश्वर द्वारा मानव को सौंपी गई सृष्टि पर गंभीर एवं अपूर्णीय क्षति को कम करने के लिए कार्य करना है ताकि आम घर बना रहे। अमेज़न पर धर्मदक्ष धर्म सभा का हवाला देते हुए धर्मदक्षों ने कहा कि ग्रह के जैविक हृदय के लिए तथा समुदाय जो इसमें निवास करते हैं उनके प्रति हमें ठोस एवं स्पष्ट समर्पण की आवश्यकता है, विशेषकर आदिवासी लोगों के लिए। माल्टा में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा को माल्टा के महाधर्मदक्ष वहां की सरकार एवं माल्टा वासियों ने सहर्ष स्वीकार किया। माल्टा में संत पापा की प्रेरितिक यात्रा की विषय वस्तु है वहां के निवासियों ने हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। एक वीडियो संदेश में माल्टा के महाधर्मदक्ष चार्ल्स शिकलूना ने इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने वीडियो संदेश में उस उदारता पर प्रकाश डाला है जिसमें पॉलुस और उनके साथियों को जहाज टूटने पर द्वीप के निवासियों द्वारा स्वागत किया गया था। उन्होंने कहा, मैं संत पॉलुस के इस द्वीप में संत पापा फ्रांसिस का स्वागत करना और 2020 के जनवरी माह में इस पाठ पर दिए गए सुंदर चिंतन के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रतीक चिन्ह में भी यह दर्शाया गया है कि हमें एक दूसरे का स्वागत करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है एवं अप्रवासी जो सुरक्षित स्थान और मानव प्रतिष्ठा की खोज में हमारे द्वीप में द्वार खटखटाते हैं उनका स्वागत करना है। महाधर्मदक्ष ने कहा, यद्यपि एक छोटे राष्ट्र के लिए यह एक बड़ा आदेश है तथापि प्रेरितिक यात्रा को वे घायलों को चंगा करने के रूप में लेंगे जिन्होंने हमारे समाज की संरचना को घायल कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे भूमध्य सागर में अप्रवासियों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करेंगे। मलाट जिससे माल्टा शब्द बना है, इसका अर्थ है प्राचीन समुद्री यात्रा वाले फोनिशियन लोगों की संस्कृति और भाषा में सुरक्षित आश्रय। महाधर्मदक्ष ने कहा कि यीशु ख्रिस्त के नाम पर हमें वैसा ही बनना है। माल्टा में संत पापा फ्रांसिस की आगामी यात्रा संत पापाओं की चौथी प्रेरितिक यात्रा होगी। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने माल्टा की यात्रा 1990 और 2001 में दो बार की थी और बाद में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने 2010 में माल्टा की यात्रा की थी। माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अवेला ने कहा कि संत पापा की यात्रा स्मरण दिलाता है कि आकार में छोटा होने पर भी माल्टा को विश्व के नेताओं से सम्मान प्राप्त है। उन्होंने गौर किया कि समुदाय की मदद करना, सहिष्णुता का भाव रखना एवं नागरिकों के अधिकारों का ख्याल रखना, ये सभी मुद्दे संत पापा फ्रांसिस के हृदय के करीब हैं, जिसको उनकी सरकार महत्व देती है। वियतनाम के धर्मदर्शों ने कोरोना वायरस महामारी का सामना करने के लिए विश्वासियों से प्रार्थना एवं ख्रिस्ती एकात्मकता का आह्वान किया है। कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हातिम के धर्मदर्श गुएन थाई होप ने कहा है कि वियतनाम के कैथोलिक इस कठिन समय में महान ख्रिस्ते प्रेम प्रकट करें। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।